कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे ऊपर कोई ऐसा कर्ज है जिसने मतलब हमारी पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी है और बचने का कोई रास्ता नहीं है।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसी स्थिति जहां हम पूरी तरह से फंस गए हों।
सही कहा, और अचानक कोई बेहद शक्तिशाली इंसान आकर वो सारा कर्ज चुका देता है। वो हमें एक तरह से जेल जाने से या पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लेता है।
ये तो किसी चमत्कार जैसा ही लगेगा।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पेंच है। ऐसा करने की वजह से वो शक्तिशाली इंसान खुद समाज की नजरों में गिर जाता है। मतलब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर थूकते हैं।
ये बहुत भारी कीमत है जो उसने चुकाई
है ना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो इंसान सड़क से गुजर रहा हो और भीड़ उसे गालियां दे रही हो, तो क्या हम गर्व से उसके साथ खड़े होंगे
या फिर हम चुपचाप अपना चेहरा छिपाकर वहां से खिसक लेंगे ताकि हमारी अपनी प्रतिष्ठा पर मतलब कोई आंच ना आए।
एकदम सही, और ये कोई काल्पनिक नैतिक दुविधा नहीं है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक पाठ को खंगालने वाले हैं जिसका पूरा आधार ही इसी इंसानी दुविधा पर टिका है।
हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज हम डॉक्टर डेविड डी सिल्वा के एक बेहतरीन व्याख्यान पर चर्चा कर रहे हैं। इस व्याख्यान का शीर्षक है द कल्चरल वर्ल्ड ऑफ द न्यू टेस्टमेंट सेशन 4 रीडिंग हीब्रूज।
बिल्कुल, और आज हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हम इब्रानियों की पत्री को, जिसे हम आमतौर पर महज एक प्राचीन धार्मिक पाठ मानते हैं, उसे प्रथम शताब्दी के सामाजिक नियमों के चश्मे से देखने वाले हैं, विशेष रूप से संदर्शक और पारस्परिकता की व्यवस्था के नजरिए से।
और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर इन प्राचीन किताबों को आज के आधुनिक चश्मे से पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि ये महज एक धार्मिक किताब है जिसमें कुछ आध्यात्मिक नियम लिखे हैं।
हाँ, हम उसका पूरा सामाजिक संदर्भ भी भूल जाते।
सही बात है, लेकिन डॉक्टर डी सिल्वा का ये शोध हमें बताता है कि अगर हम उस समय के सामाजिक नियमों को नहीं समझते तो हम उस किताब का असली मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। विशेष रूप से ये जो संरक्षक और पारस्परिकता की व्यवस्था थी ना, वो उस दौर के समाज की रीढ़ थी।
मतलब ये सिर्फ ईश्वर और इंसान के बीच की कोई अमूर्त बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये एहसान, वफादारी और सामाजिक कलंक की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई है।
तो चलिए प्रथम शताब्दी के उस समाज की सड़कों पर चलते हैं। स्रोत के अनुसार ये जो इब्रानियों की पत्री है, ये वास्तव में कोई साधारण पत्र नहीं है। मतलब जब हम कोई पत्र पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत आमतौर पर किसी अभिवादन से होती है।
हाँ, जैसे हम लिखते हैं कि आदरणीय या फिर कोई सामान्य दुआ सलाम।
ठीक कहा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्रोत बताता है कि ये किसी बहुत बड़े गूंजते हुए और प्रभावशाली उपदेश की तरह शुरू होता है, एकदम गंभीर शैली में।
एक सीधे और कड़क संदेश की तरह।
और इस पूरे उपदेश में एक ईश्वर को केवल एक रचयिता के रूप में नहीं बल्कि एक परम संरक्षक या कह लें उपकारक के रूप में दर्शाया गया है, जो अनुग्रह, विश्राम और एक स्वर्गीय घर का वादा करता है।
इस संरक्षक वाले विचार की गहराई को समझने के लिए हमें उस समय के रोमन और यूनानी समाज की जमीनी हकीकत को देखना होगा।
वो हकीकत कैसी थी?
तो आज की तरह उस समय कोई मध्यम वर्ग या सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क नहीं हुआ करता था। समाज पूरी तरह से दो हिस्सों में बटा था, एक तरफ वो लोग जिनके पास सब कुछ था और दूसरी तरफ वो जिनके पास कुछ नहीं था।
मतलब कोई बीच का रास्ता था ही नहीं।
बिल्कुल नहीं। अगर किसी आम इंसान को अपना व्यापार चलाना है, कोई कानूनी लड़ाई लड़नी है या यहाँ तक कि कभी कभी दो वक्त की रोटी भी चाहिए, तो उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाना ही पड़ता था।
ये तो एक तरह से अपना अस्तित्व बचाए रखने की व्यवस्था थी।
हाँ, और हर सुबह गरीब और कमजोर लोग इन अमीरों के दरवाजे पर कतार लगाकर खड़े होते थे। इसे सुबह का अभिवादन या सिल्यूटेशियो कहा जाता था। वे संरक्षण मांगते थे और बदले में अपनी पूरी वफादारी उस संरक्षक को सौंप देते थे।
अच्छा, तो ये एक तरफा रिश्ता नहीं था, लेन देन का मामला था।
एकदम सही कहा, और इसी संदर्भ में लेखक ईश्वर को सबसे बड़े संरक्षक के रूप में पेश करता है। एक ऐसा संरक्षक जिसके पास असीमित संसाधन है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है।
समस्या? वो क्या?
एक आम इंसान और उस परम संरक्षक के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। मतलब कोई सीधा उस तक कैसे पहुंचे?
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
यहीं पर यीशु की भूमिका को एक ब्रोकर या मध्यस्थ के रूप में, जिसे पॉन्टिफेक्स भी कहा जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। वो इन दोनों के बीच पुल बनाने वाला है।
स्रोत में इसके लिए इब्रानियों के चौथे अध्याय का जिक्र है ना, जहां उसे केवल एक संदेशवाहक नहीं माना गया है।
हाँ बिल्कुल, वो एक ऐसा मध्यस्थ है जो इंसानी कमजोरियों, हमारे लालच और हमारे संघर्षों को अंदर से जानता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस मध्यस्थ ने खुद उन इंसानी संघर्षों को जिया है।
ये तो बहुत गहरी बात है,
है ना? लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वो उन संघर्षों को जीने के बावजूद ईश्वर के सामने पूरी तरह से बेदाग है। प्राचीन व्यवस्था में एक मध्यस्थ का काम होता था संरक्षक के दरबार में जाकर अपने ग्राहकों के लिए सिफारिश करना।
और अगर मध्यस्थ का खुद का रिकॉर्ड खराब हो तो क्या होता था?
तो संरक्षक उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ ये मध्यस्थ बेदाग है, इसलिए वो पूरे अधिकार के साथ ईश्वर के दरबार में खड़ा हो सकता है, ताकि वो सही समय पर, जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो, ईश्वरीय सहायता प्राप्त कर सके।
अगर हम इसे आज के किसी आम जीवन के उदाहरण से समझें, मतलब एक आधुनिक रूपक के तौर पे देखें, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी के सबसे ऊंचे और सख्त सीईओ तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक ऐसा दोस्त हो।
हाँ, एक ऐसा दोस्त जो सीधे सीईओ के करीब हो।
बिल्कुल, जो न केवल उस सीईओ के बहुत करीब है और उसका रिकॉर्ड एकदम बेदाग है, बल्कि वो ये भी जानता है कि कंपनी के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की तकलीफें क्या हैं।
ये बहुत ही सटीक उदाहरण है,
है ना? वो सीधा सीईओ के केबिन में जा सकता है, बिना डरे हमारी फाइल पास करवा सकता है, क्योंकि वो हमारी जमीनी हकीकत को बिल्कुल हमारी तरह समझता है।
ये तुलना उस समय की मानसिकता को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ती है, और इसी वजह से ये उपदेश सुनने वालों को पूरे आत्मविश्वास के साथ मदद मांगने के लिए प्रेरित करता है।
लेकिन एक बात बताइए, अगर ये व्यवस्था इतनी शानदार थी, मतलब एक परम संरक्षक जो लगातार दे रहा है और एक बेहतरीन मध्यस्थ जो हर जरूरत पूरी करवा रहा है, तो फिर समस्या क्या थी?
यही तो पेंच है।
स्रोत पढ़ने पर साफ पता चलता है कि लोग भारी संकट में थे। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा था तो लोग इस व्यवस्था से पीछे क्यों हट रहे थे?
क्योंकि इतिहास का एक कड़वा सच ये है कि कोई भी उपहार पूरी तरह मुफ्त नहीं होता। हर बड़े उपहार की एक सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत समाज वसूल रहा था।
समाज का विरोध?
हाँ, शुरुआती ईसाई भारी सामाजिक दबाव और अकल्पनीय अपमान का सामना कर रहे थे। स्रोत हमें इब्रानियों के 10वें अध्याय की ओर ले जाता है, जहाँ बताया गया है कि कैसे इन लोगों को सार्वजनिक रूप से जलील किया जा रहा था।
उन्हें सताया जा रहा था।
बिल्कुल, उनकी जीवन भर की कमाई और संपत्ति छीनी जा रही थी, उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा था। ये सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था,
ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चोट भी रही होगी।
बहुत गहरी, और इस भारी अपमान और दबाव से बचने के लिए समुदाय के कई लोगों ने एक साथ इकट्ठा होना छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी सभाओं में आना बंद कर दिया था।
अच्छा, और बाहर वालों को ये कैसा लग रहा होगा?
गैर ईसाई पड़ोसियों के नजरिए से देखें तो ईसाइयों का ये पीछे हटना सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम था। उन्हें लग रहा था कि वे लोग वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं।
लेकिन यहाँ एक पल रुककर थोड़ा व्यवहारिक नजरिया अपनाते हैं। अगर कोई समूह इतने भयंकर सामाजिक बहिष्कार और संपत्ति के नुकसान का सामना कर रहा है, तो क्या उनके लिए चुपचाप पीछे हट जाना स्वाभाविक नहीं है?
आप अपनी जान बचाने की बात कर रहे हैं?
हाँ, मतलब क्या समाज में वापस घुलमिल जाना एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया नहीं थी? खुद को बचाना तो इंसान की पहली फितरत है ना?
यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम प्रथम शताब्दी के रोम और यूनान के समाज की हकीकत को भूल रहे हैं। वो समाज शर्म और सम्मान के सिद्धांत पर चलता था, ये सिर्फ अपनी जान बचाने का मामला नहीं था।
तो फिर ये क्या था?
प्राचीन दुनिया में सार्वजनिक अपमान समाज को नियंत्रित करने का सबसे क्रूर तरीका था। अगर समाज किसी व्यवहार को रोकना चाहता था तो वो इंसान को इस हद तक अपमानित करता था कि वो शर्म के मारे खुद ही वो काम छोड़ दे।
मतलब ये प्रथम शताब्दी का कैंसल कल्चर था।
प्रोसिटी स्क्रिप्ट था। नियम बहुत सीधा था, भारी कीमत वाले उपहार भारी वफादारी मांगते हैं।
और लेखक उन्हें याद दिलाता है कि यीशु ने उनपे जो अनुग्रह किया उसकी कीमत कितनी बड़ी थी।
हाँ, यीशु ने न केवल अपनी जान दी बल्कि समाज की नजरों में अपना सारा सम्मान भी त्याग दिया। उसे शहर के द्वार के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था।
शहर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया जाना, ये महज एक जगह की बात नहीं थी ना?
बिल्कुल नहीं। प्राचीन शहरों में दीवारों के भीतर सम्मान और सभ्यता होती थी, बाहर कूड़े के ढेर होते थे। यीशु को बाहर मारना मतलब समाज ने उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। उसने सबसे गहरी शर्मिंदगी सही।
यही पर श्रोत सेनेका जैसे महान दार्शनिक का जिक्र करता है, जो इस नियम को बहुत गहराई से समझाते हैं।
सेनेका का भी मानना था कि अपने संरक्षक के प्रति हर हाल में वफादार रहना चाहिए, भले ही इसके लिए सामाजिक अपमान सहना पड़े।
और इसी निष्ठा को समझाने के लिए एक यूनानी शब्द पारूसिया का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ होता है निडर होकर अपनी बात कहना या वफादारी दिखाना। प्राचीन यूनानी लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था।
पारूसिया, ये शब्द ही कितना प्रभावशाली है,
है ना? लेखक यही मांग कर रहा है, जब तुम्हारे यीशु ने तुम्हारे लिए अपना सारा सम्मान खो दिया तो तुम्हें भी उसके लिए इस सामाजिक अपमान को सहना ही होगा।
यहाँ आकर बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये एक ऐसा नियम है कि मतलब यदि किसी ने आपको बचाने के लिए अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी हो तो आप उसे तब अकेला नहीं छोड़ सकते जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो।
बिल्कुल, आप उस वक्त पीछे नहीं हट सकते।
लेकिन जब लोग इस वफादारी को निभाने में विफल होते हैं तो क्या होता है? स्रोत में इब्रानियों के 6 अध्याय की वो प्रसिद्ध चेतावनी आती है ना?
हाँ, जहाँ कृषि के एक बहुत ही सजीव रूपक का इस्तेमाल किया गया है।
वही बारिश पीने वाली जमीन का उदाहरण। स्रोत बताता है कि उस अच्छी मिट्टी का उदाहरण दिया गया है जो बार बार बारिश पीती है और उपयोगी फसल देती है, जिसे आशीर्वाद मिलता है।
और दूसरी तरफ उस बंजर मिट्टी का जिक्र है जो पानी तो पी लेती है लेकिन बदले में केवल कांटे और ऊंट कटारे पैदा करती है। ऐसी जमीन अंततः श्राप पाती है और जला दी जाती है।
और दिलचस्प बात यह है कि इस हिस्से को लेकर आधुनिक ईसाई धर्मशास्त्र में बहुत बड़ी बहसें होती हैं। मतलब इसे अक्सर क्षमा न किए जा सकने वाले पाप या फिर शाश्वत सुरक्षा की बहस से जोड़ा जाता है।
हाँ, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो डॉक्टर डी सिल्वा के अनुसार ये दोनों ही आधुनिक धारणाएं प्रथम शताब्दी के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करती हैं।
वो कैसे?
क्योंकि हम आज के चश्मे से उन प्राचीन नियमों को देख रहे हैं। सेनेका के नियमों के अनुसार देने वाले और प्राप्त करने वाले के नियम बिल्कुल अलग थे। देने वाला यानी उपकारक को हमेशा उदारता से देना चाहिए,
यहाँ तक कि कृतघ्न लोगों को भी।
हाँ, यहाँ तक कि उन्हें भी, उसे कभी हिसाब नहीं रखना चाहिए। लेकिन प्राप्त करने वाला यानी रिसिपिएंट को कभी ये नहीं मान लेना चाहिए कि उसे हमेशा उपहार मिलता ही रहेगा, उसे हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए।
इसलिए ये पूरी बहस ही गलत सवाल पर टिकी है।
बिल्कुल, शाश्वत सुरक्षा प्राप्त करने वाले को अहंकारी बनाती है और क्षमा न किए जा सकने वाले पाप की बहस देने वाले की उदारता पर शक करती है। दोनों ही उस प्राचीन नियम के खिलाफ है।
लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है, ये कितना विरोधाभासी है।
क्या बात?
मतलब देने वाले से उम्मीद की जाती है कि वो अपना एहसान तुरंत भूल जाए, लेकिन लेने वाले से उम्मीद की जाती है कि वो उस एहसान को जीवन भर न भूले। ये इतना एक तरफा क्यों है?
ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन असल में ये असंतुलन कोई खामी नहीं थी, बल्कि यही वो गोंद था जो उस पूरे समाज को जोड़े रखता था।
अच्छा, वो कैसे?
कल्पना कीजिए, अगर प्राप्त करने वाला ये सोच ले कि देने वाले को तो भूलना ही है तो मैं भी क्यों याद रखूं, तो वो रिश्ता उसी पल खत्म हो जाएगा। ये विरोधाभास असल में आपसी सम्मान को बनाए रखने का एक बेहद चतुर तरीका था।
समझ गया, मतलब रिसिपिएंट को कभी भी उस कृपा को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
सही कहा।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि इस पूरी पत्री का सार यही है कि अनुग्रह का उत्तर अनुग्रह से ही दिया जाना चाहिए।
बिल्कुल, ग्रेस मस्ट आंसर ग्रेस।
लेकिन ईश्वर चूंकि सर्वशक्तिमान है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसका कर्ज सीधा तो चुका नहीं सकते।
हाँ, लेकिन इब्रानियों 13:16 के अनुसार इसका एक तरीका है।
वो क्या है?
जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, विशेषकर कमजोरों की, और अपनी संपत्ति साझा करते हैं, तो ईश्वर इसे अपने लिए दिया गया उपहार मानता है। यही सच्ची पारस्परिकता है।
ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद हम सभी के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के हमारे अत्यधिक स्वतंत्र और व्यक्तिवादी समाज ने मुफ्त उपहार के विचार को इतना सस्ता बना दिया है।
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है,
है ना?
क्या हम पारस्परिकता और कृतज्ञता के उस गहरे सामाजिक कर्तव्य को पूरी तरह से भूल चुके हैं जो कभी इंसानी रिश्तों की सबसे मजबूत नींव हुआ करता था? इस पर जरूर विचार करें।